शारदा जी आस्तिक के पास मदद की उम्मीद लेकर आई थीं। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि आस्तिक राजा होने के नाते उनकी मदद जरूर करेगा। किसी भी राजा के लिए उसकी प्रजा सबसे पहले होती है। 5 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार शारदा जी आस्तिक से मिली और उन्हें अपनी परेशानी बताई। शारदा जी की परेशानी सुनते हुए आस्तिक ने कहा कि वो प्रेस के ओरिजिनल पेपर कोर्ट में सबमिट करवा दें, जिस पर शारदा जी ने कहा कि प्रेस के ओरिजिनल पेपर कहीं खो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, और ये ज़मीन तो आपकी है, तो क्या आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं? आस्तिक हंसते हुए कहता है, जी आप सही कह रहे हैं, ये ज़मीन अभी भी मेरी ही है, लेकिन राजा होने के साथ साथ मैं इस देश का एक सभ्य नागरिक भी हूँ और मैं सरकार के साथ हर चीज़ को साझा करके चलता हूँ। ये ज़मीन भी उसी का हिस्सा है। अगर सरकार मेरे राज्य से मुझे कोई ज़मीन लेना चाहती है तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। शारदा जी ने कहा, बात तो आपकी सही है राजा साहब, लेकिन आप ही सोचिए ना, अगर हमारी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएगी तो वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आस्तिक ने कहा, एक प्रिंटिंग प्रेस बंद होने से इतनी भी कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। शारदा जी ने कहा, राजा साहब, वो भले ही आपके लिए एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस होगी, लेकिन हम सबके लिए हमारी रोजी रोटी है। राजा साहब, आप हमसे हमारी रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। आस्तिक को इसी शब्द का तो इंतजार था। उसने कुर्सी पर टिककर बैठते हुए और अपनी कुर्सी को स्विंग करते हुए कहा, ठीक है, मुझे बस इसके लिए गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन भेजनी होगी। उसके बाद इस प्रिंटिंग प्रेस पर कोई भी अपना दावा नहीं कर पाएगा। शारदा जी जल्दी से कुर्सी से खड़ी होती हैं और हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, धन्यवाद राजा साहब, आप सच में बहुत अच्छे राजा हैं। कहते हुए शारदा जी दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन तभी उनके कदम रुक जाते हैं, जब आस्तिक ने उन्हें कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है शारदा जी। शारदा जी रुक जाती हैं और पलट कर आस्तिक को देखते हुए कहती हैं, अब कौन सी बात रह गई है? आस्तिक अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपने पेट की पॉकेट में दोनों हाथ रखते हुए शारदा जी को देखकर कहता है, गिव एंड टेक का ज़माना है। मेरे नाना जी बहुत नरम दिल रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी ज़मीन यूं ही दान कर दी थी, लेकिन मेरी तरफ से ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस चाहिए तो बदले में आपको मुझे भी कुछ देना होगा। मेरी एक छोटी सी शर्त है जो आपको माननी होगी। दादाजी हैरानी से आस्तिक को देखती हैं और कहती हैं, राजा साहब, हम तो बहुत मामूली से लोग हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? आपकी बेटी। आस्तिक के इन दो शब्दों में शारदा जी को सुन कर दिया और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। गुस्से में कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है राजा साहब, आप क्या कहे जा रहे हैं? आप राजा हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो दिल में आएगा आप वो करेंगे। मत भूलिए, देश में कानून नाम की चीज़ भी है। आस्तिक के भाव कठोर हो गए और उसने कहा, अगर कानून पर इतना भरोसा ही है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए, कानून से ही अपनी प्रिंटिंग प्रेस वापस ले लीजिए। शारदा जी को पता था कि यहाँ का कानून भी राजा साहब की जेब में है, तो उन्होंने अपने शब्दों में नरमी लाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मैं भावनाओं में कुछ ज़्यादा बोल गई थी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आस्तिक ने कहा, मतलब साफ है, आपकी बेटी, मुझे उससे शादी करनी है। आस्तिक के इन शब्दों को सुनकर शारदा जी को जोर का झटका लगता है। वो हैरानी से आस्तिक को देखकर कहती हैं, राजा साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको मेरी बेटी से शादी करनी है? आप होश में तो हैं? ये इम्पॉसिबल है। आस्तिक ने भी गुस्से में शारदा जी को देखकर कहा, अगर बात ऐसी है तो फिर अपने साथ साथ उस जमीन पर मौजूद हर दुकान को बंद करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो जमीन मेरी है और मैं उसे सरकार को दूं या फिर आज मैं जला दूं, वो मेरी मर्जी होगी। उसके बाद कोई भूखे मरे या मरते मरते जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। शारदा जी आगे आती हैं और हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? वहाँ पर छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो छोटा मोटा काम करके अपना रोजगार चला रहे हैं, आप ऐसे कैसे अपनी प्रजा के साथ ऐसा कर सकते हैं? आस्तिक टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट टेबल पर ही घुमाते हुए कहता है, आप मेरी बात मान जाइए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दीजिए और मैं वहाँ की जमीन परमानेंट वहाँ के लोगों को कर दूंगा। शारदा जी अभी भी असमंजस में थी। वो हैरानी से अभी भी आस्तिक को देख रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आस्तिक, जो कि इस वक्त यहाँ का राजा है, वो उसकी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है। शारदा जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, राजा साहब, आपसे शादी करने के लिए तो आसपास के राज्यों की राजकुमारियां तैयार हैं, फिर आपको मेरी ही बेटी से शादी क्यों करनी है? हम तो आपके बराबर की भी नहीं है। आस्तिक ने अपने मन में कहा, और तुम लोग कभी मेरी बराबरी कर भी नहीं सकते। पर उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव रखते हुए कहा, वो दरअसल बात ऐसी है कि मैंने आपकी बेटी को कहीं देखा था, उसके बाद मुझे वो पसंद आ गई, इसीलिए तभी सोच लिया था कि शादी करूंगा तो आपकी बेटी से ही करूंगा। और आपको शादी से परेशानी क्या है? आपकी बेटी मेरी पत्नी बनेगी और सिंघल की रानी बनेगी, महलों में राज करेगी। कई लड़कियां ऐसे सपने देखती हैं पर किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं, पर आपकी बेटी के सारे सपने पूरे होंगे, वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगी। क्या आप अपनी बेटी को रानी बनता हुआ नहीं देख सकती हैं? शारदा जी सच में पड़ गई थी। देखा जाए तो हर माँ अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर ही देखती है, और राजा साहब जैसे बड़े आदमी से उनकी बेटी की शादी होगी, ये सोचते हुए शारदा जी सोच रही थी। एक तरह से देखा जाए तो अरुणिमा के लिए ये एक अच्छा रिश्ता था, पर अभी अरुणिमा की पढ़ाई बाकी है। शारदा जी ने राजा साहब को देखते हुए कहा, राजा साहब मेरी बेटी अभी पढ़ रही है। आस्तिक ने कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। शारदा जी सोच में पड़ जाती है। आस्तिक को पता था कि शारदा जी हाँ ही रहेगी और ऐसा हुआ भी। शारदा जी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी ठीक है, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर अरुणिमा ने मना कर दिया तो? आस्तिक ने कहा, आप उसकी माँ है, उसे समझाइए जाकर, उसके एक हाँ में सबकी भलाई छुपी हुई है। शारदा जी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। उनके जाते ही आस्तिक के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो शक्ति में बदल गई और उसने अपने मन में कहा, मैं जानता था तुम वो औरत हो जो अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हो, तुमने तो अपनी बेटी तक को भी नहीं छोड़ा।